ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। महाशिवरात्रि की इस रेलेवेंस को समझते हुए जब हमने शिव की पहचान की, उस परमात्मा ने स्वयं आकर जब अपना परिचय दिया, तब बाकी सारे पर्वों का रेलेवेंस भी समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात, महाशिवरात्रि का रेलेवेंस समझ में आता है कि ये रात्रि शिव की रात्रि है जब अवतरण होने की बात कही जाती है, और फिर वो नया सवेरा, वो एक खूबसूरत सा जगत, वो संसार जिसकी हम सब कल्पना करते हैं, वो सार्थक हो सकता है। बहुत सी बातें ऐसी अभी तक हम करते आए हैं जो हमारे लिए थोड़ी नई है, लेकिन जब हम देखते हैं, जब उसको हम अनुभव करने लगते हैं, तो हमारे लिए वही सच हो जाता है। और फिर जब एक बार सच सामने आ जाता है, उसे अनुभव करना बहुत दूर नहीं होता। हर बार हम ये कहते हैं कि ये पूरा परिचय, ये पूरी जानकारी, ये पूरा ज्ञान हमें परमात्मा स्वयं आकर दे रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ा माध्यम बनता है मुरली, बाबा की वो मुरली जो सेंटर्स पर रोज सुनाई जाती है। हमारे बहुत से दर्शक जो हैं, जो सुनते आ रहे हैं, अब एक परिवार का हिस्सा बन गए हैं, वो तो जानते ही हैं मुरली के बारे में, लेकिन बहुत से दर्शक जो नए जुड़ रहे हैं, उन्हें बताएंगे कि वो महावाक्य, वो अमृत की बूंदी जो रोज हमारे हमारे पास आती है, हमें ज्ञान मिलता है, ताकि दिन भर जब हम लौकिक जीवन में रहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तब वो आकर हमें याद दिला देते हैं कि हमारी सही पहचान क्या है। तो बाबा ने ही, श्री बाबा ने स्वयं महाशिवरात्रि के इस पर्व की रेलेवेंस के बारे में समय समय पर, या महाशिवरात्रि के जितने भी बरस गुजरे हैं, उन दिनों में बहुत सी बातें कही हैं, मुरली में कही हैं। तो आज एक बार फिर उसी मुरली को, कि बाबा ने स्वयं क्या कहा है महाशिवरात्रि के इस रेलेवेंस के बारे में, आइए आज शुरू करते हैं। और हमारा सौभाग्य, हमारे साथ है बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिलू बहन। शिलू बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम शांति।
ओम शांति।
अगर हम बाबा की मुरली की बात करते हैं, शिलू बहन आप तो समर्पित हैं, आप तो हैं, माउंट आबू में भी रहती हैं, देखिए अगर तो मुरली का प्रभाव कैसा होता है, कैसे परिवर्तन आपके अपने सामने ही, जो नए लोग भी आए होते हैं, जो बहुत ज्यादा अभी नहीं होते हैं ज्ञान में, उनका प्रभाव क्या आपको पड़ता दिखता है जब बाबा के वो महावाक्य जा रहे होते हैं?
जब हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, हमें महसूस होता है कि आत्मा पर ज्ञान वर्षा हो रही है। तो जैसे वर्षा जब होती है तो सूखी कलराठी जमीन फिर से हरी भरी हो जाती है, तो आत्मा में एक नई शक्ति भरती है। जैसे एक रिचार्जेबल बैटरी चार्ज होती है, तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, ये अनुभव होता है। और बाबा कई बार उदाहरण देते हैं कि तुम बच्चे बाप के पास आते हो बादल भरने के लिए, जैसे बादल सागर के ऊपर होते हैं, तो वो जैसे सागर से जल भरते हैं और फिर जाकर के बरसते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे सागर के किनारे आते हो और यहाँ भरते हो और फिर जाकर के आप बरसो। तो इसीलिए हम बाबा की मुरली सुनते हैं, ताकि हम धारण करें, अपने जीवन में उतारें और फिर दुनिया को बांटें, दें सबको, यही बाबा का कहना है।
बिल्कुल। तो वो जो रस, जो अमृत रस जो है, वो बरसता है जब, तो जो लोगों में परिवर्तन आपको दिखता है, जितने भी लोग आकर जब ये सुन रहे होते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से ही जब हम बात करते हैं, तो एक स्ट्रेंथ, एक जहां एक प्यार का एहसास होता है, वहीं एक ताकत भी मिलती है। तो वहां जब वो सामने आपके साक्षी आप देख पाते हैं, तब क्या वो फर्क दिखता है?
हाँ, जब बाबा की मुरली लोग सुनते हैं तो वो अति इंद्रिय सुख में झूमते हैं, क्योंकि बाबा की बातें बहुत रेलेवेंट है, आज के जमाने के लिए रेलेवेंट है, कंटेम्पररी है, क्योंकि हम यही चाहते हैं। आज दुनिया में जो इंसान चाहता है ना, वो हमको इस मुरली से मिलता है। और आश्चर्य की तो बात यह है कि कई प्रकार के प्रश्न हमारे मन में होते हैं, फिर जब मुरली सुनते हैं तो बिल्कुल उन्हीं प्रश्नों का हमें उत्तर भी मिल जाता है। तो हम कहते हैं, देखो आज बाबा ने मुरली में हमें अपने प्रश्न का जवाब दे दिया। तो ये बिल्कुल जैसे हमारे मन की बात हमें मिल जाती है। और कई बार जो हमें समझ में नहीं आती बातें, वो समझ भी हमको उस मुरली से मिल जाती है। तो एक क्लैरिटी जीवन में कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इतना स्पष्ट हो जाता है, जो हमारे लिए रास्ता साफ हो जाता है।
बिल्कुल। और आज क्योंकि हम बात महाशिवरात्रि की कर रहे हैं, तो बाबा ने महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भी बहुत सी बातें कही हैं बच्चों के लिए, तो आज वो मुरली हम पढ़े साथ में।
जी, यह मुरली मैं सुनाना चाहूंगी। बहुत ही सुंदर मुरली है जिसमें बाबा ने शिवरात्रि का सच्चा अर्थ बताया है। तो पहले तो हम जानते हैं कि परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं, लेकिन सर्व संबंधों में भी तीन संबंध मुख्य हैं। और जब जब हम शिव की बात करते हैं तो त्रि शब्द जरूर यूज करते हैं, परमात्मा को त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, फिर त्रिशूल, त्रिपुंड, ये त्रि तो तीन मुख्य संबंधों की भी बात करते हैं। वैसे तो वो माता पिता, शिक्षक, सदगुरु, सखा, स्वामी, सब कुछ है, लेकिन तीन मुख्य संबंध है पिता, शिक्षक और सदगुरु। तो आज बाबा ने मुरली की शुरुआत ही उससे की है। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रि संबंध से देख रहे हैं। तो जब मुरली सुनते हैं तो हम ऐसे महसूस कर रहे हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें देख रहे हैं और तीन संबंध से देख रहे हैं। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। जैसे बच्चा वारिस होता है, माता पिता उनको देख करके महसूस करते हैं कि बच्चा पैदा हुआ माना वारिस आया, जो भी पिता की प्रॉपर्टी है उसका वो हकदार है। तो परमात्मा भी जब हमें देखते हैं तो हम उनके वारिस हैं, उनकी प्रॉपर्टी के हकदार हैं, ये पहले इस दृष्टि से देखते हैं। वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थियों, क्योंकि परमात्मा शिक्षक है और हम उनके विद्यार्थी हैं, इसलिए ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। क्यों बाबा ईश्वरीय विद्यार्थी कहते हैं? क्योंकि विद्यार्थी तो कई प्रकार के होते हैं, कोई भी विद्या लेते हैं वो विद्यार्थी है, परंतु ईश्वरीय विद्यार्थी माना जो ईश्वरीय ज्ञान ग्रहण करते हैं और ईश्वरीय ज्ञान देने वाला स्वयं ईश्वर है। तो ईश्वर हम बच्चों को पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते? ईश्वरीय ज्ञान, तो ईश्वरीय विद्यार्थी बन गए। साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। तो माता पिता, शिक्षक और सतगुरु के हम बच्चे हैं। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी ये तीन संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष तीन संबंध देख रहे हैं। ये तीन संबंध सभी को प्यारे हैं। वैसे भी प्यारे होते हैं जीवन में, देखो सबसे पहले माता पिता होते हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है तो टीचर मिलता है, फिर और बड़ा होता है तो गुरु करता है। तो जीवन में भी ये क्रम अनुसार ये तीन संबंध मिलते हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने के अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष तीन संबंध देख रहे हैं। ये तीन संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंचे। बाबा उसको शिव जयंती भी कहते हैं शिवरात्रि को, क्योंकि शिव का अवतरण अर्थात शिव का अलौकिक जन्म होता है। तो परमात्मा शिव की प्रवेशता ब्रह्मा तन में होती है, तो वो पद्रामणी कहो, प्रवेशता कहो, हम उसको शिव जयंती के रूप में भी मनाते हैं। इसलिए आप देखेंगे शिव का कोई उस रूप से जन्म नहीं होता, कोई माँ के गर्भ से जैसे बच्चा पैदा होता है वैसे नहीं, शिव को हमेशा दिखाते प्रकट हुआ, पैदा नहीं हुआ, प्रकट हुआ,
स्वयंभू जो कहा,
स्वयंभू कहा, तो प्रकट हुआ। तो प्रकट हुआ माना ऐसे ही नहीं कोई प्रकाश प्रकट होगा, लेकिन शिव परमात्मा प्रवेश करते हैं और जिसके तन में प्रवेश करते उसका नाम ब्रह्मा रखते, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा उनको रचना रचनी है। तो बाबा कहते हैं तो इसलिए सभी भाग भाग कर पहुंच गए हो, बाप को मुबारक देने आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो। ये भी एक प्रश्न है। बाबा कई बार कहते हैं शिव बाबा की जयंती माना साथ साथ बच्चों की भी जयंती,
क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत हुई है जन्म की, जहाँ जहाँ ज्ञान मिलना शुरू हुआ, जहाँ सब कुछ समझ में आने लग गया, वही जन्म हुआ।
क्योंकि ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा के बच्चे भी साथ साथ जन्म लेते हैं, तो इसीलिए शिव बाबा का अवतरण हुआ ब्रह्मा तन में और ज्ञान देना शुरू कर दिया। और जैसे ज्ञान देना शुरू किया, जिन्होंने सुना वो उनके वो बच्चे बन गए, इसलिए बच्चों की भी वो जयंती हो गई, जन्मदिन हो
गया। क्योंकि कहीं ना कहीं वो नया जन्म इसलिए भी हो रहा है कि वो जन्म हम कहें कि हमें अपनी सही पहचान मिल गई।
बिल्कुल, ये नया जीवन मिल गया। जीव शरीर तो पहले से ही था, लेकिन आत्मा के अंदर वो नवीनता आ गई, एक नई शक्ति भर गई, तो जैसे नया जीवन मिल गया। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ये तुम बाप को मुबारक देने आए हो, पर बाप से मुबारक लेने आए हो, क्योंकि बच्चों की भी जयंती है, तो दोनों काम करने आए हो, दोनों ही देने भी आए हैं, लेने भी आए हैं। जब नाम ही है शिव जयंती या शिव रात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? त्रिमूर्ति है ना, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, और त्रिसंबंध की भी बात आती है, तो ये त्रिसंबंध क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? तो शिव बाबा जवाब देते हैं, आप बच्चों की रचना करते हैं। तो पहले ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं, तो ये रचयिता के रूप में हो गए, माता पिता के रूप में हो गए, फिर उनकी पालना होती है, तो विष्णु के रूप में पालना करते हैं। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा, इसलिए बाप की जयंती सो आप बच्चों की भी जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। ये कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है जो स्वयं शिव परमात्मा हमको शिवरात्रि के दिन, शिव जयंती के दिन मुबारक देने आते हैं। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए, और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं। उस दिन तो बहुत भाई बहने शिव बाबा के भी जैसे गीत गाते रहते हैं, बहुत गीत गाते हैं, चाहे दूर हैं चाहे सम्मुख हैं, गीत बाबा को वो सुनाई देते हैं। दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं, और रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पद्मा पदम गुना बधाइयां दे रहे हैं। तो पहला ये पैराग्राफ केवल बधाई का है, और कितना दिल से, कितने प्यार से भगवान हम बच्चों को बधाई देते हैं, मुबारक देते हैं।
बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात हम आपके साथ भी शेयर करना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों के साथ शीरू बहन, की महाशिवरात्रि को हम सदियों से मनाते आ रहे हैं इस पर्व को, लेकिन जहां हमें यह एहसास हो कि परमात्मा स्वयं आकर बधाई देते हैं और हमारा भी जन्म दिवस मना लेते हैं उसे, तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए भी यू नो सभी आत्माओं के लिए, सभी बच्चों के लिए जो परमात्मा की को अपने बच्चों की तरह हमें बच्चा मान रहे हैं, हमें वारिस मानते हैं, उनके लिए भी एक बहुत कहना चाहिए बहुत खूबसूरत पल है। खूबसूरत
जी, इतना खूबसूरत है जो बाबा ने फिर आगे कहा है कि कैसे ये सोच कर ही उमंग उत्साह आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये तो सभी बच्चे जानते ही हो कि बच्चों के जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरा जीवन बनाना। बाबा ये बहुत जोर देते हैं कि आपके जीवन में कभी दुख गम अशांति न हो, सदा उमंग उत्साह का जीवन हो। आपकी अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। दुनिया में तो केवल मनाते हैं, फिर अगले दिन वही मातम मातम हो जाता है, एक दिन खूब मनाते अगले दिन फिर दुख की अनुभूति होती है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो केवल मनाते हैं, बनते नहीं है, उस त्योहार का जो अर्थ है वो जानते नहीं, इसलिए बनने का प्रश्न ही नहीं होता। तो आपकी अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना, तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्साह भरा जीवन बनाएंगे। जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है। अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन का क्या होगा? खत्म। ऐसे आपके जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। आपके जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह हो, अगर उमंग उत्साह नहीं तो जीवन भी नहीं।
बिल्कुल, ये आज हमें बहुत क्लियरली ये देखना है, बहुत सारे दर्शकों के साथ भी ये बात आती है कि कई बार हम शिवरात्रि का पर्व जो है, कई बार ये देखा गया है शीलू बहन कि हम डर से मना रहे होते, मतलब पर्व की बात ये कि व्रत की, और या लगातार हम करते आते हैं कि चलिए व्रत करना ही है, आस्था और विश्वास और कहीं ना कहीं एक पूरी हमारा धार्मिक जो वो पूरी प्रवृत्ति होती है उसके कारण भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसको सही परिपेक्ष में देखना जरूरी हो जाता है। आज के रेलेवेंस में अगर हम देखें, जब हमें अपनी सही पहचान, परमात्मा की सही पहचान होगी, तो जो उमंग और उत्साह आज या शिवरात्रि के दिन हम महसूस कर रहे हैं, बाबा हमें यही कह रहे हैं कि हर पल वो करते रहें।
तो उमंग उत्साह में सदा रहना है, क्योंकि आपके जीवन का श्वास ही है उमंग और उत्साह। आपके जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो जीवन भी नहीं। श्वास की गति भी सामान्य होनी चाहिए, उमंग उत्साह भी अति भी नहीं जाए। जैसे कई बार हम बहुत उमंग उत्साह में आ जाते हैं ना, एकदम जोश आ जाता है, फिर जब देखते हैं कि ये तो पता नहीं क्या हो गया, तो फिर होश आता है। तो जोश और होश, परंतु सदा उमंग उत्साह में एक कंटिन्यूस है और हम नॉर्मल है, एक रस है, तो ये जोश और होश उस रूप का नहीं होगा, वो कंटिन्यूस होगा। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, जैसे श्वास की गति अगर बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और बहुत स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कहा जाएगा। जैसे ब्लड प्रेशर भी, ब्लड प्रेशर अगर बहुत हाई हो या बहुत लो हो तो भी इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता है, तो भी यथार्थ जीवन नहीं कहेंगे ना। तो यहाँ भी चेक करो कि मेरे जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है, यानी एक रस चाहिए, या कभी बहुत फास्ट कभी बहुत स्लो हो जाती है, एक रस रहती है, एक रस होनी चाहिए, कभी बहुत कभी कम, ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। एक घड़ी केवल उत्सव मनाया, दूसरे घड़ी नहीं तो फिर ऊपर नीचे होगा, इसीलिए हर घड़ी उत्सव है। ये तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि और कहाँ जाएंगे मनोरंजन करने के लिए, तो बाबा के पास आते हैं बच्चे मनोरंजन करने के लिए। दुनिया में तो कहाँ सागर के किनारे जाएंगे, बगीचे में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, यहाँ तो बाबा के आगे ही सागर का किनारा है, यही बगीचा है, सब कुछ यही है। तो यही जीवन का श्वास है उमंग और उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना, बाबा पूछ रहे हैं, या कभी नीचे ऊपर हो जाती है? बाबा तो बच्चों से पूछेंगे ना।
बिल्कुल, और हम में से हर एक ने ये महसूस किया है कि अभी हम जिस प्रोसेस में है, पुरुषार्थ में है, तो जरूर ऐसा होता है कि जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होते हैं शीलू बहन, वो उत्साह जो है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं नीचे जाता है, और फिर याद दिलाते हैं कि नहीं मैं कौन हूँ, और वो उमंग और उत्साह। तो बाबा का यही कहना है कि हर पल एक्चुअली वो रिमेम्बरेंस, वो स्मृति रहे।
हाँ, एक रस अवस्था उमंग उत्साह की रहे, नीचे ऊपर न हो। बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं, ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता, जैसे एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेकर के चेक करता है, वैसे नहीं, या वो ब्लड प्रेशर की मशीन लेकर चेक करते हैं, वो रूप से बाबा नहीं चेक करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा जानते हैं हर एक की स्टेज क्या है। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले हैं, जो जरूरत ही नहीं होती। तो शिव जयंती या शिव रात्रि, दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना, दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी है। अपने बर्थडे का रहस्य तो सुना सकते हो ना, हर एक अपने बर्थडे का सुनाता है, आज मेरा जन्मदिन है। तो यादगार में भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वे लोग शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं, और आपने तो जन्म से ही व्रत ले लिया है। अब ये अंतर है, हमने तो जन्म से ही व्रत ले लिया, आपने तो जन्म से ही सदाकाल के लिए अपने जीवन में एक ही बार व्रत धारण कर लिया है, इसलिए बार बार धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हों को तो हर साल व्रत रखना पड़ता है और आप सब ने जन्म से ही व्रत ले लिया। क्या व्रत लिया है ये भी हम लोग बताते हैं कि क्या व्रत लिया, कि हमें बाप के समान संपन्न और संपूर्ण बनना है।
सबसे पहले तो शीलू बहन यही बात हुई कि हमें पहचान तो हुई परमात्मा या हमारे पिता हैं कौन। जब हमने उन्हें पहचाना उसके बाद हमने उनके समान बनने का व्रत लिया।
ये फिर बाबा पूछते हैं ये पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा है, क्योंकि बाबा हमको
खुद ही तो कह रहे हैं कि चेक करते जाते हैं।
जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे सिद्ध क्या होता है कि आपके जीवन में ये खान पान का व्रत भी सदा ही है।
खान पान का तो चल ही रहा है।
वो तो है ही, ऐसे नहीं एक दिन हमने व्रत रखा, परंतु ये सदा काल का व्रत है। फिर बाबा पूछते हैं कभी कभी ये ढीला तो नहीं हो जाता है? कई बार ढीला हो जाता है, सोचते हैं चलो कुछ भी खा ले, लेकिन नहीं, ये व्रत है कि हमें शुद्ध अन्न खाना है और शुद्ध अन्न का ही सेवन करना है, तभी तो मन शुद्ध होगा। और शुद्ध हाथों से पकाया हुआ भोजन हो वो हमें सेवन करना है, तभी मन का शुद्धिकरण होगा। तो इस प्रकार से बाबा ने व्रत की कई बातें कही है। तो एक व्रत है खान पान का, दूसरा व्रत है अपने संकल्पों का, कि हमें अपने मन में शुद्ध संकल्प लाने हैं। ये भी एक व्रत लिया है हमने कि कभी भी हम अपने मन में अशुद्ध संकल्प या व्यर्थ संकल्प आने नहीं देंगे। तो बाबा कहते हैं उसके लिए भी चेक करो कि क्या सदा ही आपके अंदर में शुद्ध, श्रेष्ठ, समर्थ, शुभ यही संकल्प आते हैं या कभी व्यर्थ भी आते हैं, कभी अशुद्ध भी आते हैं। क्योंकि योग के अंदर हम यही लक्ष्य रखते हैं कि शुद्ध संकल्प आए, फिर शुद्ध के साथ शुभ संकल्प आए। शुद्ध संकल्प है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप, ये शुद्ध संकल्प है। मैं परमात्मा की संतान हूँ, ये शुद्ध संकल्प है। फिर शुभ संकल्प, शुभ संकल्प ना ऑस्पिशियस, कई बार ना है तो पता नहीं ये न हो जाए, पता नहीं एक्सीडेंट न हो जाए, पता नहीं मर न जाए, तो ये भी नहीं सोचो। शुभ संकल्प सदा ही, शुभ संकल्प जो भी सोचो एक पॉजिटिव रूप सोचो, नेगेटिव न सोचो। जो डराने वाला हो, दुख देने वाला हो, अशांत करने वाला हो, वो शुभ नहीं होगा। इसलिए शुद्ध भी हो, शुभ भी हो, फिर समर्थ भी हो। समर्थ पॉजिटिव में डिटर्मिनेशन भी हो कि नहीं ये मुझे करना ही है, मैं करके दिखाऊंगा। तो जो भी श्रेष्ठ हमारे कर्म है वो डिटर्मिनेशन के साथ हम करें तो वो समर्थ हो गया। और फिर श्रेष्ठ भी हो तो श्रेष्ठ एलिवेटेड थॉट्स, चाहे अपने प्रति चाहे दूसरों के प्रति, जिसको हम कहते हैं शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। तो इसको बाबा कहते हैं ये भी एक दृढ़ संकल्प करो कि मन के अंदर केवल यही लाने देंगे। जैसे वो खान पान का व्रत रखते कि ये खाना ये नहीं खाना है, तो क्या मन का संकल्प लाना है, क्योंकि मन का भोजन तो हमारे विचार ही है, तो वो संकल्प क्या लाने हैं। बाबा फिर हमें हर विकार के लिए कहते हैं कि तुम्हें उन्हें जीतना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध के लिए तो बाबा बहुत कहते हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा हमको थोड़ा थोड़ा क्रोध आ जाता है, तो बाबा कहते हैं ये क्रोध करने की छुट्टी किसने दी? छुट्टी तो बाबा ने दी नहीं, या आप अपने आप कोई छुट्टी दे देते हो यहाँ भले क्रोध करो। तो देखा गया है कई बार क्रोध नहीं आता है लेकिन क्रोध के बाल बच्चे आते हैं। अब क्रोध के बाल बच्चे कौन से होते हैं पता है? क्रोध के बाल बच्चे कौन से?
क्रोध के बाल बच्चे मतलब वो कि हमें क्रोध नहीं आ रहा,
नहीं क्रोध के बाल बच्चे, तो पता है क्रोध के बाल बच्चे कौन से होते हैं? इरिटेशन, थोड़ा सा आवेश आ जाना, जैसे कि गुस्सा आया पर हम उसको पी रहे हैं, पर चेहरे पर तो आ ही जाता है, आंखें तो दिखाई देती है, क्योंकि क्रोध मुख से नहीं निकलता तो आंखों से निकलता है।
अच्छा, वो लंबे समय तक चलता है। देखा ये गया है कि जो जब क्रोध के पिताजी या क्रोध आते हैं तो वो बिल्कुल गुस्से में उसी वक्त क्षणिक होके वो निकल जाता है, लेकिन इरिटेशन को अगर हम देखें शीलू बहन, वो लंबे समय तक चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा पूछते हैं क्या उनको भी, उनको छुट्टी दे दी है क्या? क्रोध तो महाभूत है, आपने, आप कहेंगे कि हमने तो उसको भगा दिया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो ये क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत, उसमें क्रोध के बाल बच्चे भी न हो। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं बाबा क्रोध आया नहीं लेकिन क्रोध दिलाया गया।
Somebody else is responsible. मैंने तो कुछ नहीं कर रहा था, उसने दिला दिया गुस्सा।
हाँ तो क्या करें, मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मजे की बातें करते हैं, कहते हैं आप भी उस समय होते ना बाबा तो आपको भी आ जाता। तो बाबा को भी कहते थे बाबा आपको भी आ जाता। तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा तो कहते अच्छा तुमको माफ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना, क्योंकि बाबा तो कहेंगे, क्योंकि बाबा को कहते बाबा मैंने क्रोध तो कर लिया, अभी माफ कर दो। तो बाबा कहते माफ तो चलो कर दिया पर आगे नहीं करना। फिर तीसरा अर्थ शिवरात्रि का है, अंधकार मिटाकर प्रकाश लाने वाली रात्रि। तो मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, ये है शिवरात्रि। तो एकदम घोर रात्रि और शिव अवतरित हुए, तो परमात्मा है ज्ञान सूर्य, तो जैसे ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ और अज्ञान अंधकार खत्म हुआ। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वो स्वयं क्या होगा? अब बाबा ध्यान खिंचवा रहे कि आप विश्व को रोशनी देने वाले हो तो आप स्वयं क्या होंगे? स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना। तो बाबा मिसाल देते हैं, देखो दीपक के माफिक तो नहीं हो ना। दीपक के लिए क्या कहते हैं पता है ना?
दीपक तले अंधेरा।
हाँ, दीपक के नीचे अंधेरा होता है और ऊपर रोशनी होती है। आप तो मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है।
वो
दिए की तरह हाँ। नहीं है कि दिया ऊपर से तो रोशनी दे रहा नीचे अंधेरा हो।
कितनी बार हम अपने आप को कहते हैं कि अच्छा सूर्य नहीं बन सकते तो आप दीपक ही बन जाओ। हाँ। लेकिन जब हम एक क्षमता है, जब परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि हम वो चारों तरफ का प्रकाश देने वाले, एक तरफ भी अंधकार क्यों रहे? एक आस्पेक्ट तो कहीं ना कहीं अंधेरे में रह गया ना, तो वो क्यों रहे जब संपूर्ण प्रकाश तक पहुंचने की, प्रकाशमय होने की हमें क्षमता है? तो वो क्यों? ये सचमुच असली वारिस होने का।
तो बाबा कहते हैं दीपक के माफिक तो नहीं हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वह अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकती। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह ही नहीं सकता। रह सकता है? आ सकता है। फिर बाबा पूछते हैं, हर एक अपने आप से पूछे, जबकि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ तो मेरे पास अंधकार कहाँ से?
लेकिन हम पता क्या करते हैं चिरू बहन, अगर अब मैं कोई बात सुनते सुनते आया कि हम अपने आप को लिवरेजेस देते जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं दीपक तो बना, चलो कोई बात नहीं, मैं पूरा गुस्सा नहीं, थोड़ा सा गुस्सा कर पाया, पूरा तो नहीं कर पाया, थोड़ा थोड़ा तो खत्म किया मैंने। तो ये अपने आप को हम लिवरेज दे देते हैं कि चलो ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन क्योंकि बुद्धि हमारी जो है वो, तो तभी यहाँ बाबा के ये महावाक्य, हर बार हम ये कहते हैं कि अब हमारी बुद्धि से इस वक्त काम नहीं चल सकता, कलयुग इतना ज्यादा घोर अंधेरे में है।
जी, तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। हाँ, आ सकता है? बाबा पूछते हैं, चले रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं,
ये भी नहीं
बाबा हमें इतना दूर ले जाए, ये नहीं कि चलो रहता नहीं पर आया फिर चला गया, आए ही नहीं अंधकार। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे, अगर जरा भी कोई अंश अंश मात्र भी है तो भी अंधकार तो कहेंगे
तो
ना। अंधकार खत्म हो गया ना, शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हैं हम लोग, एक चित्र दिखाते हैं शिवरात्रि का, जिसमें दिखाते हैं शिव बाबा का जब अवतरण होता है ये पांच विकार एक एक विकार एक एक असुर के रूप में दिखाते हैं, वो कैसे भाग रहे हैं और रोशनी विश्व में आ रही है और ये विकार भाग रहे हैं, बड़ा सुंदर दृश्य है। तो बाबा कहते हैं शिवरात्रि का चित्र जब दिखाते हो तो उसमें क्या दिखाते हो, अंधकार भाग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रह गया, ये भी दिखाते हो, तो कहते नहीं इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे, तो हम लोग शिवरात्रि पर झंडा लहराते हैं, शिव बाबा का झंडा लहराते हैं, तो बाबा कहते हैं कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे, झंडा तो भले लहराओ बाबा कहते हैं परंतु क्या करना है, जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो हम ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं है, इसलिए बाबा को रिमाइंड कराना पड़ता, जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करते हैं ना तो फिर भूल जाते हैं अगले साल फिर वही रेजोल्यूशन करते हैं, तो बाबा कहते ये नहीं कि व्रत लेते हो फिर भूल जाते हो, ये तो नहीं होता है ना। पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए,
वचन न जाए वाली बात
है, धर्त पढ़िए धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए, ये रघुकुल रीत सदा चली आए। तो बाबा प्रतिज्ञा कहते इतनी बड़ी चीज है, कुछ भी त्याग करना पड़े कुछ भी सुनना पड़े लेकिन प्रतिज्ञा न जाए, ऐसे नहीं जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है, अब कई बार ऐसे भी होता है कोई समस्या नहीं तो प्रतिज्ञा ठीक है, अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता है। अब बाबा प्रतिज्ञा का गहरा अर्थ बताते हैं, वचन अर्थात वचन, तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करें कहने से नहीं, अब कई बार मुख से तो कह देते हैं आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस और फिर कहेंगे प्रॉमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन, और मन से अगर किया फिर उसको तोड़ेंगे नहीं, केवल मुख से किया तो तोड़ भी देंगे। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती, कभी कभी महसूस होता है कि शक्ति नहीं है, रहती है पर फिर कई बार नहीं भी रहती है। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो और फिर किससे प्रतिज्ञा की, स्वयं भगवान से प्रतिज्ञा की, ये तो बहुत बड़ी बात है। कई बार ना जैसे कहते भी है भगवान की कसम, तो भगवान की कसम खाना माना ये तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा, फिर इसको कैसे तोड़ सकते हैं। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मना भव बनाना, क्योंकि मन को सदा परमात्मा में लगाना और मन मना भव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है, लेकिन मन से करना होगा, ये बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि मन से की गई बात, और जिस तरह से बाबा ने आज कहा महाशिवरात्रि के इस खास उपलक्ष्य में श्री बहन की कई बातों के साथ, तीन अगर हम देखें तो तीन संबंधों के बारे में एक बार फिर याद दिलाया कि पिता का संबंध, गुरु शिक्षक का संबंध और सद्गुरु का संबंध जो हमारे साथ परमात्मा का है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम शिवरात्रि को ही क्यों उत्सव मना रहे हैं, जब हम बच्चों की रचना उन्होंने की कि ये जन्मदिन ये जयंती शिव के प्रकट होने की जयंती ही नहीं हमारी भी जयंती है, क्योंकि हमें भी ज्ञान मिल गया तो हमें नव जीवन की जो प्राप्ति हुई, जो अब अपनी सही पहचान के साथ हम जीवन कर रहे हैं, तो ये जीवन जो है ये हर पल उत्साह और उमंग का होगा। आज ही महाशिवरात्रि के ही उपलक्ष को हम उत्साह और उमंग से सेलिब्रेट नहीं करेंगे बल्कि हर पल को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, हर पल जो है हमारा सेलिब्रेशन हो सकता है। आज की इस पूरी बातचीत के लिए और यह मुरली के महावाक्य हम तक पहुंचाने के लिए सभी दर्शकों तक तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति।
तो आज जो हमें मिला है सबक, जो हमें कहा है बाबा ने, वो बहुत ही अच्छी बातें समझ में आई हैं। और सबसे बड़ी बात, जो छोटे छोटे हम अपने आप को लिवरेजेस दे सकते हैं, एक तो ये बात कि तीन जो उनके साथ संबंध है हमारे, दूसरी बात ये कि हर पल हम उत्साह और उमंग का एहसास कर सकते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम, क्योंकि ये एक श्वास की तरह है, जो नया जीवन मिला है उसमें हमारी सांस उत्साह और उमंग है, तो अगर वो ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, इट मीन्स इट इज नॉट नॉर्मल, और उसमें हमें चेक करने की जरूरत है। और कहते हैं बाबा कि वो हमें चेक कर भी रहे हैं। दूसरी तरफ एक और बात, जो हम छोटी छोटी बातों को देकर अपने आप को लिवरेज दे देते हैं कि थोड़ा गुस्सा कर लिया, या थोड़ी अगर हमें कभी जेलसी हो गई, या थोड़ा हमसे कुछ ये हमने कर लिया, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हमें ये करना है कि जो व्रत महाशिवरात्रि में जो व्रत अभी तक हम करते आ रहे थे क्योंकि हमें सही पहचान नहीं थी, व्रत हमें लेना है, संकल्प धारण करना है कि हम बाबा के बच्चे हैं तो उन्हीं के दिए हुए ज्ञान पर चलेंगे। पवित्रता का जो हमने व्रत लिया है, जो हमने सही मार्ग पर चलने का व्रत लिया है, उसमें कहीं ढील नहीं करनी है। और आपने जो कहा कि मन मनाभाव का जो मंत्र है वो किसी भी यंत्र से कम, एक बहुत बड़ा यंत्र है, और बाबा को के साथ अपना मन लगाने की बात है। तो आज महाशिवरात्रि के इस खास उपलक्ष्य पर ये कई बातें जो बाबा ने स्वयं हमें कही है महाशिवरात्रि के पिछली एक मुरली में, तो वो हम आपके साथ लेकर आए। हो सकता है आपके पास कोई सवाल हो, कोई ऐसी बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप ब्रह्मा कुमारीज के देश विदेश में फैले किसी भी सेंटर में संपर्क कर सकते हैं। अपने नजदीक के सेंटर के बारे में जानकारी पाने के लिए आप इन फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें ई मेल कर सकते हैं। इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वॉन्ट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 9 9 5 5 9 6 6 0.
Thank you.